वहां पर रुका और उसमें से ढेर सारे लोग निकले। उसमें सब खोजते खोजते पहुंचे कि मंदिर कहां है। सब बड़े धर्मात्मा, बड़े श्रद्धालु लोग थे, जैसे कि आज के हुआ करते हैं, बिल्कुल वैसे ही थे। वो पहुंचे, उन्होंने प्रार्थना करना शुरू की। उन्होंने देखा कि ये तीन लोग जो वहीं के हैं, ये भी प्रार्थना करते हैं और घंटों खड़े रहते हैं, देखते रहते हैं और फिर धीरे से कहते हैं, यू आर थ्री, वी आर थ्री, ना समझ बुद्धू। उसमें से जो एक अच्छे विद्वान किस्म का व्यक्ति था, मैं बहुत संभल के बोल रहा हूं, किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे, बहुत विद्वान किस्म का व्यक्ति था। उसको बहुत अच्छे से भक्तियां आती थी, बहुत अच्छे से पूजा करवा लेता। उसने कहा तुम किधर आओ, इसके अलावा कुछ नहीं आता, नहीं इसके अलावा तो कुछ नहीं आता, ये बहुत मुश्किल से आया है, हम तुम्हें सिखाएंगे। उन्होंने कहा बहुत अच्छा, हम तैयार, आप सिखाइएगा, बैठे जो लेंगे। और उन्होंने जो भक्तियां हो सकती थी वो बहुत बढ़िया से बढ़िया स्तुति और उनको सिखाई। उन्होंने जो की जो दोहरा दी, याद हो गई, हाँ याद हो गई, तो कल से क्या करना है, कल से यही पढ़ना जो मैंने सिखाई, अभी तो तुम पढ़ते थे वो सब नासमझी वाली बात। ये क्या पूजा है कि यू आर थ्री, वी आर थ्री, इसमें तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। उन्होंने कभी पूजा का कोई अर्थ नहीं निकाला था और शायद वे जानते थे कि पूजा का कोई अर्थ नहीं है। पूजा का अर्थ भीतर घटित होता है, बाहर व्याख्यात नहीं होता। बाकी छोटे सब लोग, उनका तो समय हो गया था, ये तीनों रह गए। तीनों रह गए तो दूसरे दिन उन्होंने प्रार्थना शुरू करी। अब वो जो पंडित वगैरह बता के गए थे प्रार्थना, वो तो उनको भूल गई, वो पुरानी वाली प्रार्थना फिर याद आ गई। उन्होंने कहा ये तो गड़बड़ हो गया, अब कहां खोलूं उनको। देखा समुद्र के किनारे भागे भागे पहुंचे कि जहाज कितनी दूर गया होगा, जहाज बहुत दूर दिखाई पड़ रहा था, छोटा। उन्होंने कहा मन ही मन कि चूक तो बहुत हो गई, अब वो जो प्रार्थनाएं बतानी थी वो तो याद भी नहीं रह गई, अब क्या करें, चलो चलते हैं उनके पास तक चलते हैं, फिर से पूछ के आते हैं। ये मन में विचार ही नहीं आया कि कैसे चलना पड़ता है। उन्होंने कहा तो चलो एक बार भगवान को याद कर लो, यू आर थ्री, वी आर थ्री, और चलना शुरू करो। और चलना शुरू कर दिया और चलते चले गए। जहाज के निकट पहुंचने को थे तो जहाज के लोगों ने देखा कि ये तीन रोशनियां रात के अंधेरे में कहां से चली आ रही है। बहुत चकित हुए, डरे भी कि पता नहीं क्या है, या तो कोई जल का राक्षस राक्षस नहीं आ रहा है। देखो तो जो भगवान को इतना मानता है, उसको इतनी जल्दी राक्षस का ध्यान कैसे आ जाता है, उसको ऐसा क्यों नहीं लगता कि भगवान ही आ रहा होगा, लगता है आपको जब जब भी कोई दुख आता है तो उसमें ऐसा नहीं लगता कि भगवान ही आ रहा होगा, कोई दुख कहां पाएगा। उनको लगा कोई राक्षस तो नहीं आ रहा। जब वो निकट आए तो देखा कह रहे ये तो तीन वो बुद्धू वाले लोग। ऊपर आकर के वे उन पंडित के चरणों में गिर गए कि कृपा करो, हम तो भूल ही गए प्रार्थना, आज जब हमने करना शुरू किया तो हम तो भूल ही गए, आप फिर से सिखा दो। अब बारी थी पंडितों की, बेहद के बक्के खड़े हुए हैं इस विचार में डूबे हुए कि इनकी प्रार्थना सही है या आज तक हमने जो प्रार्थना करी है वो सही है, इनका भगवान से संबंध सही है या शब्दों तक सीमित हमारा भगवान से संबंध सही है, इनका भावनाओं का संबंध इन्हें पानी के बीच भी यहां तक ले आया, और एक दिन तो ये चाहें तो इस संसार से भी पार हो सकते, लेकिन हम तो अपने शब्दों में अटके हुए, हम क्या सिखाएं इनके लिए प्रार्थनाएं, इनकी प्रार्थनाएं ही सच्ची हैं, अब हम भी वैसा ही संबंध और वैसी ही प्रार्थना भगवान से करेंगे उन्होंने तो तय कर लिया था अब हमारा समय है कि हम भी अपना संबंध भगवान से ऐसा ही आत्मीयता का बनाएंगे, शब्दों तक सीमित न रखकर उन्हें भावों तक विस्तार देंगे। आज का नमोकार हम इसी भावना के साथ करते हैं कि नमोकार हमारे भीतर हमें भगवान से, हमारे अपने भगवान से जो हमारे भीतर बैठे हैं उनसे जोड़ दे और हमारा हमारी आत्मा से इस तरह का संबंध हो कि हम उसका अनुभव कर सकें और पंच परमेश्वर की शरण को स्वीकार कर सकें। ऐसी भावना के साथ मेरे नमः।
उसे लगे कि ये मेरे पिता रोज मंदिर जाते हैं, शायद इसलिए इतने शांत हैं, शायद इसलिए इतने सच्चे हैं, शायद इसलिए कभी झूठ नहीं बोलते हैं, शायद इसलिए कभी चीट नहीं करते हैं। ऐसा उसके जीवन में जब तक हम अपने जीवन से प्रकट नहीं करेंगे तब तक वो धर्म को क्या समझेगा। हम आज धर्म को ग्रंथों से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत छोटी सी कोशिश है, लेकिन वास्तव में धर्म किसी के लिए समझ में आया है तो धर्मात्मा के आचरण से समझ में आया है। धार्मिक व्यक्ति ही धर्म समझा सकता है। आगे यही आचार्य समन्तभद्र स्वामी कहेंगे, ना धर्मो धार्मिक बिना। धर्म किसी जगह एग्जिस्ट नहीं करता है, किसी पुस्तक में धर्म नहीं है, धर्म तो जीवन में जब घटित होता है तब आकर के सामने आता है। धार्मिक के बिना धर्म नहीं होता और धर्म धारण करे बिना कोई धार्मिक नहीं होता जब तक कि आचरण में उसके नहीं आएगा। इसलिए ये चीज हम बिल्कुल एकदम रोज रोज अपने जीवन में झांक करके देखें कि मैंने अब इतना पढ़ लिया, अब इतना पढ़ने के बाद मुझे कैसा लगा, मेरे जीवन से कोई अज्ञान का अंधेरा हटा या नहीं, या कि मैं फिर वही अपनी चाल चलूंगा जो पुरानी टेव है मेरे मन की उसे पूरे करते रहूंगा, या कि कुछ परिवर्तन करूंगा। मेरे जीवन में राग द्वेष कितना कम हुआ या नहीं हुआ, कल की अपेक्षा मैंने ज्यादा राग द्वेष तो नहीं किया आज, क्या ऐसा आप सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे। मैं तो ये मान के रोज आके बैठ जाता हूं और रोज आगे बढ़ जाता हूं कि शायद आप ऐसा कर रहे होंगे। मेरा विश्वास है कि आप ऐसा करेंगे। आपका अपने ऊपर कितना विश्वास है मैं नहीं जानता, पर मेरा तो विश्वास है कि अगर एक बार किसी ने ठीक ढंग से सुना है, श्रावक के मायने ही है कि जो ठीक ठीक सुनता है और फिर विवेक करता है और उसके बाद जो उसके योग उसे मालूम पड़ता है उसका आचरण करता है। सोचा जाने का नानम, सोचा जाने पावगम, उभिन्ति जाने सोचा जमशियम तम समाचरी। सुनकर के ही कल्याण का मार्ग जाना जाता है, सुनकर के ही पाप का मार्ग जाना जाता है। दोनों मार्ग सुनकर जानने जाते हैं। बुद्धिमान पुरुष वो है जो सुनता है और कल्याण के मार्ग को ग्रहण कर लेता है। अकेला सुनता नहीं है, उसमें से कल्याण के मार्ग को ग्रहण कर लेता है। मैं आशा रख रहा हूं आपसे कि आप अपने कल्याण के लिए जो मार्ग आचार्य भगवंत प्रकट कर रहे हैं उस पर जरूर गौर करके अपने जीवन को परिवर्तित करेंगे। बहुत स्लो है परिवर्तन। मैं देखता हूं कि जो बातें हम यहां चर्चा करते हैं वो मैं चाहता हूं कि मैं जब कहीं भी बैठा हूं, कहीं से भी गुजरूं, तो वो थोड़ी सी प्रकट हो, लेकिन अभी थोड़ी सी प्रकट होने में कमी जैसी मालूम पड़ती। जैसा मेरा ऑब्जर्वेशन है वैसा बता रहा हूं आपको। हो सकता है कि मैं उन लोगों से नहीं मिला हूं जिनने अपने जीवन में परिवर्तन किया है, उन लोगों से मिलता हूं रोज जो कुछ भी नहीं करते हैं, जो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, जरा भी उनके जीवन में पोलाइटनेस या कि क्या कहें मैत्री, या कि उनके भाषा में बदलाव, या कि उनके आने जाने चलने फिरने में चेंज मुझे बहुत कम दिखाई पड़ता है। मैं आशा रख रहा हूं कि हम बहुत जल्दी अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे, समय रहते हुए परिवर्तन लाएंगे। समय निकलने के बाद तो फिर हमारे हाथ में नहीं रह जाएगा, कब करिएगा, आज से शुरू करिएगा। तीन बातें जो हमेशा हमें ध्यान रखनी है स्वाध्याय के दौरान, वो मैंने आपसे कही कि मेरा ज्ञान कितना कम हुआ है, मेरे राग द्वेष में कितना फर्क आया है, मेरे एटीट्यूड में कितना चेंज आया है। एटीट्यूड बदलना चाहिए। क्रिया बदलना बहुत आसान है, सोच बदलना बहुत मुश्किल है। क्रिया तो कोई भी बहुत आसानी से बदल लेगा, हो सकता है मेरे कहने से और कल आप मंदिर आना शुरू करें, हो सकता है आप पहले ही मंदिर आते हैं और उसी तर्ज में आते रहें। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप अपनी तर्ज बदल लीजिएगा, आप अपनी सोच का ढंग बदल लीजिएगा। जो जितना पवित्र ढंग हो सकता है सोच का वो अंगीकार करिएगा, तब ये सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगे। हम लोग अब बहुत बुद्धिमान हो गए हैं, मुझे कई बार ऐसा लगने लगा है। हम लोग बहुत पढ़ लिख गए हैं, बहुत सारी चीजें जानने लगे हैं। उस जानने का हमारे ऊपर असर ये हुआ है कि हम जान करके थोड़े से रिजिड हो गए हैं। जैसे किसी चीज को, किसी व्यक्ति को कोई चीज मालूम पड़ जाती तो फिर उसको पूछो तो वो हंसी मड़ाता है, हाँ मालूम है मुझे, आई नो वेल, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मतलब मैं जो कह रहा हूं उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, आप पहले से जानते हैं। ऐसा विविधनेस थोड़ी सी आ जाती है। कई बार व्यक्ति अपनी सारी क्रियाओं को ज्ञान हो जाने के बाद तर्क देकर के ठीक साबित कर लेता है। हम ऐसे किसी उसमें नहीं पड़ेंगे, उलझन में। हम बहुत सरल होकर के और सहज और विनम्र होकर के इन सारी चीजों को अंगीकार करेंगे, तभी हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। हमने सबसे पहले धर्म की परिभाषा पढ़ी थी कि सच्चा ज्ञान, सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान और सच्चा आचरण। सच्चाई जीवन में कहाँ से आती है? सच्चाई जीवन में श्रद्धा से आती है और सच्ची चीज के प्रति श्रद्धा से आती है। सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा से हमारे जीवन में सच्चाई आना शुरू होती है। फिर हम उस सच्चाई को जानना पसंद करते हैं कि हाँ, अगर ये सच्चाई है, हमारा विश्वास है, तो हम जानना चाहते हैं कि है क्या सच्चाई। वही हमारा ज्ञान है और फिर उस सच्चाई को अपने जीवन में अंगीकार करना शुरू करते हैं। इसी का नाम तो सम्यक चारित्र है। और कोई बहुत बड़ी रोज रोज सुनते हैं अपन और बहुत आसान सी लगने वाली चीज है, लेकिन जब जीवन में आने की बात आती है तो बहुत कठिन हो जाती। नहीं, आप इसको आसान बनाइएगा। श्रद्धा के बारे में आज भी हम कुछ थोड़ी सी बात करें, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। पहले नंबर तो उसी को रखा गया है। सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान, सच्चा आचरण, ये तीनों मिलकर के ही हमारा जीवन शुरू होगा, धार्मिक जीवन शुरू होगा। और फिर श्रद्धा कैसी है? श्रद्धानम परमार्थानम। मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूं। आप मेरे से जब 150वां श्लोक पढ़ेंगे, तब भी 149 श्लोक आपको पढ़ना पड़ेंगे, तब 150वां श्लोक बताऊंगा। हमारा पैटर्न ही है, जितनी ये श्लोक पढ़ चुके हैं उन सबको हम रिवाइज करें। हम समझें कि हम क्या क्या अपने जीवन में ला चुके हैं और क्या हमें आज नया कुछ और रख लेना है। श्रद्धान करना, सच्चे देवगुरु शास्त्र पर श्रद्धान करना, लेकिन अपने स्वार्थवश नहीं, अपने परमार्थ की सिद्धि के लिए करना। तीन मूर्ताओं से अविवेक से रहित होकर के करना, वो हम समझेंगे। आठ अंगों से युक्त होकर के करना, आठ मद से रहित होकर के करना, ये श्रद्धान सच्चा श्रद्धान कहलाएगा। यही सच्ची श्रद्धा कहलाएगी। हमने आपसे पहले भी कहा था कि श्रद्धा अगर जीवन में आ जाती है तो निश्चिंतता आ जाती है, निर्भय हो जाते हैं, हम निशंक हो जाते हैं। आज इसी बात को हम थोड़ा सा और डिटेल करेंगे कि कैसे निशंक हो जाते हैं, कैसे हम निर्भय हो जाते हैं। कभी आपने विनोबा का नाम सुना होगा। उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा है कि जब वो बचपन में अंधेरे से बहुत डरते थे, कोई भी व्यक्ति होगा अपने बचपन में अंधेरे से, तो उसको बहुत रेयर केसेस में है कि कोई बच्चे बहुत जिनके माता पिता के संस्कार वैसे होंगे, सैनिक वैनिक का बेटा होगा तो अलग बात है, पर सामान्य जो बेटे होते हैं वो तो भय ही करते हैं। अगर रात हमको ये कहा जाता था कि ऊपर वाले कमरे से सामान उठा के लाओ, तो हम मना कर देते थे, वहां अंधेरा है, वहां पर हवा हो सकता है, ऐसा भय लगा करता था। तो मां नीचे से आवाज देती थी कि देखो तुम चले जाओ, और फिर ऐसा है कि भगवान का नाम लोगे तो कोई हुआ होगा, अगर होगा भी तो वो भाग जाएगा वहां पर। तो विनोबा की मां भी जो है बचपन में विनोबा कहती थी कि जब भी उनको भय लगता था तो कहती थी डरो मत, तो अपने साथ भगवान को फील करो, तुम भगवान पर विश्वास तो रखो, भगवान पर विश्वास रखोगे तो भय नहीं लगेगा, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तो विनोबा ने लिखा कि मेरा भय तो जो है वो माने आसानी से निकाल दिया, जो मैं अंधेरे से भय करता था वो माने श्रद्धा दिला करके निकाल दिया, और जो मेरा संदेह था उसको माने तर्क से निकाल दिया। कैसे? उनको छाया के बारे में बहुत संदेह था कि ये छाया नाम की कोई चीज हमसे अलग है, और उससे वो डरते थे क्योंकि संदेह था उसके ऊपर। और अक्सर ये होता था कि वो झगड़ा करने उतारू हो जाते थे उस छाया के साथ। तो एक दिन जब वो उनकी छाया जमीन पर पड़ रही थी तो मां देख रही थी कि इसको कैसे समझाएं। तो उन्होंने कहा, बेटे ये जो तुम्हारी छाया है, तुम इस पर संदेह करते हो, इससे भयभीत होते हो, मालूम ये बहुत आज्ञाकारी है, तुम्हारी बात मानती है। कैसे मां मानती है बात? अच्छा देखो, तुम अगर अपने सिर पर हाथ रखोगे तो ये भी तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगी, वो भी अपने सिर पर हाथ रखेगी। अच्छा तुम बैठ जाओ, वो भी बैठ जाएगी, तुम ठहर जाओ, वो भी ठहर जाएगी। ये तुम्हारी बात मानती है, तुम्हें इससे डरने की बात नहीं है, तुम्हें इस पर संदेह करने की बात नहीं।
और विनोबा ने देखा हाथ रख के, तो छाया ने भी हाथ रखा, अरे ये तो बड़ा मजा है, ये तुम्हारी बात मानती। फिर बैठ गए तो छाया भी बैठ गई, वो चलने लगे तो छाया भी चलने लगी। फिर उस दिन से जो है उस संदेह का भी निवारण हो गया। क्या किया आखिर? इतना ही तो किया कि जब जब भय लगे तो श्रद्धा से, और जब जब संदेह हो तो उसे तर्क से समाप्त कर देना। जहां तर्क आवश्यक है वहां तर्क, और जहां आज्ञा प्रधान है वहां आज्ञा, जहां परीक्षा आवश्यक है वहां परीक्षा, दोनों का समन्वय श्रावक के भीतर होना चाहिए। परीक्षा भी एक हद तक ही, फिर उसके बाद श्रद्धा शुरू होनी चाहिए। संदेह पर भी संदेह होना चाहिए कि मैं ऐसा संदेह क्यों करता हूं। जो व्यक्ति को संदेह पर भी संदेह होने लगे तो श्रद्धा पैदा होना शुरू हो जाती है। अपन का संदेह भी तो देखो कैसा संदेह है, एक भिखारी की तरह संदेह है, जिसके हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो संदेह कर रहा है इस बात पर कि मैं जंगल के रास्ते से नहीं गुजरूंगा, क्या पता लूट ना जाऊं। वाह, एक धीरा नहीं है तो लूटने का संदेह है, लूटने का भय है। वाह रे, ऐसे ही हमारे साथ भी है, हमारा क्या लूट जाएगा? जो हमें संदेह होता है इस बात का कि लेकिन हमें संदेह अपने भौतिक सुखों के छिन जाने का होता है, हमें अपने धन पैसे के छिन जाने का होता है, और तो हम श्रद्धा नहीं कर पाते हैं। जिसको संसार में अभी सांसारिक चीजों के छिन जाने का भय है, उसकी श्रद्धा अभी कमजोर है। जिसकी श्रद्धा है आत्मा पर, वो कहता है कि मेरी संपदा मेरे सिवाय तो कोई और देख तक नहीं सकता, छीनने की बात तो अलग ही रही, मेरी आत्म संपदा कोई नहीं छीन सकता है। ये सम्यक दर्शन होने के बाद इतना कंफर्मेशन हो जाता है, इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है कि फिर उसे किसी भी चीज से संदेह पैदा नहीं होता। ये डाउट लेस होना, या कि एब्सेंस ऑफ डाउट, ये निश्चिंत अंग कहलाता है। आज अपन उस श्रद्धा की एक क्वालिटी, उस श्रद्धा के आ जाने पर क्या क्या हमारे जीवन में प्रकट होता है। एक दिन हम बैठे थे और हमने समझा था बहुत शॉर्ट में कि हम निस्संदेह हो जाते हैं, हमें कोई डाउट नहीं रह जाता। दुनिया की चीजें सब हमने वास्तविकता जान ली है, और इसी तरह जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है उसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि हाँ उन्होंने ठीक कहा, आत्मा अलग है शरीर अलग है। मैं तो अभी तक यही सोचता था कि जो शरीर है वही आत्मा है, मेरा ये भ्रम टूट गया है। अब जब शरीर मेरा नहीं है तो ये सारा जो फैलाव मैंने फैला के रखा है वो सारा शरीर का है, आत्मा का फैलाव नहीं है, ये तो शरीर का है, उसी के संबंध है सारे के सारे, और ये एकदम टूट जाएंगे, इसलिए मैं भयभीत होकर के इन सबको पकड़े रहता हूं। ये भी मेरा भ्रम है, ये तो किसी भी चीज छूट जाएगा, मेरे छोड़े बिना छूट जाएगा। इससे पहले कि ये छूटे मैं क्यों ना छोड़ दूं, ऐसा विचार उसके भीतर बहुत आसानी से आना शुरू हो जाता है। इतना विचार ही सही, अगर आपका अप्रोच, आपका एटीट्यूड थोड़ा सा भी चेंज होता, आपका दृष्टिकोण थोड़ा ही बदलता है, मानिएगा आपके भीतर धीरे धीरे श्रद्धा आना शुरू हो जाएगी। ये निशंकित अंग ऐसा है, हम इसे पढ़ें, इसके पहले थोड़ा सा और देख लें कि हमारे सच्चे देवगुरु शास्त्र का स्वरूप क्या है, कहीं हम भूल तो नहीं गए हैं। बहुत शॉर्ट में हमारे भगवान वीतरागी, हमारा शास्त्र का उपदेश वीतराग था, हमारे गुरु वीतरागी, हो गया काम। सच्चे देव वे जो वीतरागी हैं, जहां जहां में वीतरागता दिखाई पड़ेगी वहां वहां हमारा प्रणाम, जहां जहां में वीतरागता का उपदेश मिलेगा, राग द्वेष की हानि का उपदेश मिलेगा, वहां वहां हमारा शास्त्र को प्रणाम, और जहां जहां हमें गुरु जिनके भीतर वीतरागता होगी, जो राग द्वेष को निरंतर घटाने में लगे होंगे, और जो विषयों की आशा से रहित होंगे, जो ज्ञान धान में लीन रहते हैं, परिग्रह और आरंभ नहीं रखते हैं, पाप क्रिया न करते हैं न कराते हैं न करने का उपदेश देते हैं, न हमें उनसे पाप क्रिया करने का समर्थन करवाना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको बता रहा हूं, इशारा कर रहा हूं। बहुत छोटी छोटी चीजें भी जो एक बन जाता है पूछने की, फिर बाद में उन पर कमेंट्स करने की, वो प्रक्रिया अच्छी नहीं है। अपन पहले श्रावक के साथ मजा है कि पहले वो सब करवाता है, फिर उसके बाद कहता है कि वो ऐसा करते हैं, देखो तो मजा। उसे जिन कदमों में माथा टेकना है उनसे वो कितनी सारी अपेक्षाएं रखता है। अगर नहीं करते हैं तो अपनी नाराजगी व्यक्त करता है, अगर कर देते हैं तो खुश होकर के, और फिर बाद में मौका आने पर कहता है कि अरे वो तो ऐसा भी करते हैं, अरे वो तो ऐसा भी करते हैं। इसके मायने क्या हुआ? हमने ठीक ठीक गुरु को पहचाने ही नहीं, हमने शास्त्र को भी ठीक ठीक नहीं जाना, हमने तीनों को गड़बड़ कर दिया। एक को गड़बड़ करिएगा तीनों गड़बड़ होंगे। तीन तीन नहीं है, तीन एक ही है। जो परम गुरु हैं वे अरहंत ही हैं, वही हमारे देव हैं, उन्हीं की वाणी हमारी जिन वाणी है, इसके अलावा कोई नहीं है यहां पर। इसके अलावा तो सब फॉलोअर हैं, कोई थोड़ा सा आगे निकल गया है, कोई थोड़ा सा पीछे है, सब फॉलो कर रहे हैं, ओरिजिनल तो वही है। उनमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, उनके प्रति हमारी श्रद्धा में कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वरना क्या होगा? वरना हम ही पीछे रह जाएंगे। दूसरे का तो जो होगा होगा, वो तो जानिएगा, कोई अपना नरक निर्मित कर रहा है तो वो करे, उसकी जिम्मेदारी। लेकिन हम काहे को उसके नरक निर्मित करते देखकर अपना मन खराब करें, अपना मन काहे को गंदा करें? ये तो हमारी जिम्मेदारी है। तो हमें अपने भीतर पेट्रोल के देखना है कि कहीं मेरी श्रद्धा में परिवर्तन तो नहीं आता है, कहीं मैं कोई उस तरह की प्रक्रिया तो नहीं करने लगा हूं जो मेरी श्रद्धा को तोड़ती है। छोटी छोटी चीजें श्रद्धा को तोड़ देती हैं। स्वार्थ तो श्रद्धा को तोड़ता ही तोड़ता है। इसलिए हमें कहा गया कि परमात्मा श्रद्धा हमको करनी है, और सच्चे देव गुरु शास्त्र का एक ही स्वरूप है। जो वीतरागी हैं वे देव हैं, वे गुरु हैं, और वे हमारे साधु हैं। हमें उस वीतरागता का ध्यान रखना है। अब आज जो है कहते हैं कि कल तो अपन ने समझ लिया था विशेषावसती को, गुरु का स्वरूप समझ लिया था। विशेष आपसे क्या कहें, अगर शिष्य की आंख से देखिएगा तो गुरु दिखाई पड़ता है, गुरु की आंख से देखिएगा तो कोई दुनिया में गुरु नहीं है। हम ही जब गुरु बन के बैठ गए हैं तो फिर कोई गुरु नहीं मिलेगा। जिनेंद्र वर्णी जी हमेशा कहा करते थे कि मैं जीवन भर किसी को गुरु नहीं बना पाया। आचार्य श्री के चरणों में जब आए थे तो बहुत गुरु के बारे में उन्होंने बातें कही, और फिर आखिरी में कहा कि मैं पूरी जिंदगी गुरु को ढूंढता रहा, आज स्वीकार करता हूं, आज मैं शिष्य की हैसियत से स्वीकार करता हूं। ईसरी की बात है। और फिर आचार्य श्री मैं दो चार दिन उनके साथ रह करके, जब सरलेखना का टाइम था, दो चार दिन रह करके साथ में, और एक दिन अचानक मन बन गया नीमिया घाट से शिखर जी की वंदना करने का। वर्णी जी को तो बताया नहीं, कानों कान किसी को खबर होने देते नहीं आचार्य श्री कि लोग व्यवस्था में ना जुड़ जाए एकदम तेजी से। तो फौरन उठा करके पीछे के मंडल हम लोग अर्ली मॉर्निंग जो है सारा संघ निकल गया। नीमिया घाट से 15 किलोमीटर का चक्कर पड़ता था, वहां से जाकर के शिखर जी की टॉप पर ऊपर पहुंचे और वंदना करके लौटे तो 3 बज गए दोपहर के, सुबह के निकले तो 3-3:30 बजे चरिया के लिए निकल करके, और 4:30 बजे फिर इसी वापस लौटे। तो वर्णी जी फूट फूट कर रो रहे थे, आचार्य श्री के चरणों में पैर रख, अपने उनके चरणों में अपना सिर रख करके रो रहे थे। हम लोग बहुत दंग रह गए, और वो एक ही बात कह रहे थे कि आपने मुझे शरण दी और ऐसे बिना बताए मुझे छोड़ करके मत चले जाइएगा, एक बार शिष्य बन के देखिएगा, फिर बाद में इस चीज का एहसास होगा, वैसे नहीं होगा। एक पल का भी वियोग बहुत भारी पड़ता है। अगर सच्चे देवगुरु शास्त्र पर आपकी श्रद्धा है तो सच्चे देवगुरु शास्त्र 24 घंटे आपके भीतर दौड़ते रहेंगे। उनकी फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं है, फिजिकल प्रेजेंस की बात नहीं कर रहा हूं, वे कहां तक हमारे साथ रहेंगे, लेकिन जो एक प्रेजेंस हम फील करते हैं और उसके अभाव में जितनी पीड़ा महसूस करते हैं, वो शायद उन क्षणों में देखते बनती थी उनसे। तब भी आचार्य श्री ने सिर्फ इतना ही कहा था कि वर्णी जी संलेखना तो आपको अपने हाथ से करनी है, आपके उपादान की योग्यता जो होगी मैं तो निमित्त मात्र हूं, आप इस पर बेहद मत होइएगा। मैं निमित्त मात्र हूं, लेकिन निमित्त मात्र होने के बाद मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि सबसे देवगुरु शास्त्र सिर्फ निमित्त हैं, लेकिन पहले कहना पड़ेगा कि मोरी तो से बनी ताते करत फुका, लेकिन पहले ये कहना पड़ेगा मोरी तो मोह से बनी तो काय को कर रहे पुकार, मोरी तो से बनी ताते करत पुकार, मुझ कारज के कारण सु आप। और मैं ये जान गया हूं आप कुछ नहीं करेंगे, इस धोखे में आप भी नहीं रहना मेरे भगवान कि आप मेरा कुछ करेंगे, नहीं, मुझ कारज के कारण सु आप, मैं बनाऊंगा कारण तो आप बन जाएंगे, कारण मेरा कार्य हो जाएगा आपको कारण बना करके।
एक तरफ तो पूरी तरह ये कह रहे हैं कि आप ही तो सब कुछ मेरे को तो उसे बनी था और कोई उसे बनी नहीं मेरी तो मेरे से भी नहीं बनेगी मेरी तो आप ही को करना है सब सुल्तान आप ही को तो ऐसा लगता जैसे कि भगवान ही सब कुछ कर देंगे और अगली बार दूसरी लाइन में कहते हैं कि मुझ कारज के कारण ऐसा है ये हमारा हम जिसको निमित्त बना रहे हैं वो सिर्फ निमित्त ही नहीं है वो और कुछ भी है जब तक हम परिपक्व नहीं होते हैं तब तक यही सच्चे देव गुरु शास्त्र की और सच्ची श्रद्धा वैसे सबकी है भैया हम किसी की श्रद्धा पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं हम आपसे जितनी बातें कर रहे हैं हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपकी श्रद्धा कम है पर हम ये कह रहे हैं कि अपनी श्रद्धा को थोड़ा सा परख लेना हमेशा परखते रहना एक एक क्षण में बदलने में देर नहीं लगती आप खुद देखिएगा कि सुबह एक ही चीज के बारे में कोई दूसरा मन होगा दोपहर होते ना होते उसी चीज के बारे में दूसरा कोई एटीट्यूड होगा और शाम होते ना होते पता नहीं हमारा मन क्या 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 हो जाए अंतर्मुहूर्त के अंदर सम्यक दर्शन होता है स्वरूप सम्यक दर्शन और छूट जाता है और कहो फिर उसके बाद अर्थ पुद्गल परावर्तन काल लग जाए और सम्यक दर्शन का कुछ हो ही नहीं और हम बाह्य क्रिया सारी करते चले जा रहे हैं ठीक रूहू बहू जैसी कोई एक सम्यक दृष्टि को करनी चाहिए पर अपने अंतर में भीतर में जो ग्रंथियां हैं उनको ध्यान में रखिएगा एक बहुत मजे की घटना है वो एकदम याद आ गई मुझे मैं फिर आपसे इसके बारे में बात करता हूं बहुत क्लियर हो जाए मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है एक कसौटी है हमें स्वयं अपने को कसौटी पे परखना चाहिए छोटी छोटी चीजों हमारी श्रद्धा कैसे आसानी से डगमगा जाती है और फिर भी हम अपने को श्रद्धालु मानते हैं एक बार क्या हुआ कि पानी वानी नहीं गिर रहा था तो अनाउंस किया गया मंदिर में